नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक महोत्सव में भारत के फिनटेक कौशल को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, फिनटेक क्षेत्र ने वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के पालघर में भारत के गहरे पानी के सबसे बड़े बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ अब बातचीत का समय नहीं रहा और हर कार्रवाई के परिणाम होते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर विभिन्न हितधारकों के सुझाव जानने के लिए संसद की संयुक्त समिति की बैठक नई दिल्ली में जारी। और पेरिस में पैरालंपिक खेलों के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों की निगाहें निशानेबाजी, एथलेटिक्स और बैडमिंटन में पदक जीतने पर होंगी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक दुनिया भर के लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए काम कर रहा है। मुंबई में वैश्विक फिनटेक सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत द्वारा फिनटेक को अपनाना गति और पैमाने के दृष्टि से विश्व में बेजोड़ है। दुनिया भर के तत्काल डिजिटल लेन देन भारत में हो रहे हैं।
भारत में फिनटेक की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत व्यापक है। इससे गांव और शहर की खाई को ब्रिज करने में मदद मिली। कभी हमारे यहाँ बैंक की सर्विस लेने में ही एक पूरा दिन लग जाता था। एक किसान के लिए, एक मछुआरे के लिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। फिनटेक ने इस समस्या को दूर किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय सेवाओं के लोकतंत्रीकरण में फिनटेक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन से समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली है।
आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है। आज लोगों को फॉर्मल सिस्टम से जुड़ने में अपना लाभ नजर आता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने फिनटेक से जो परिवर्तन आए हैं वे प्रौद्योगिकी मात्र तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इन परिवर्तनों का सामाजिक प्रभाव दूरगामी है। प्रधानमंत्री ने मुंबई में जीएफएफ प्रदर्शनी का भी दौरा किया, जिसमें फिनटेक परिदृश्य के नवाचार दर्शाए गए हैं। इस अवसर पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत आज परिवर्तन के ऐसे मुकाम पर है जहां प्रौद्योगिकी प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाएं पूरी करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
फ्रॉम मोबाइल बैंकिंग टू डिजिटल पेमेंट्स, एआई ड्रिवन लेंडिंग, ब्लॉकचेन इनोवेशंस, द फिनटेक इकोसिस्टम इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ आवर ग्रोइंग इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, इम्प्रूविंग एफिशियंसी एंड इनेबलिंग रियल टाइम सर्विसेस अक्रॉस द कंट्री।
वैश्विक फिनटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन भारतीय भुगतान परिषद, राष्ट्रीय भुगतान निगम और फिनटेक समन्वय परिषद ने संयुक्त रूप से किया है। प्रधानमंत्री आज पालघर के सिडको मैदान में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और वाढ़वण बंदरगाह का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना पर लगभग 76,000 करोड़ रूपये की लागत आएगी। ये परियोजना भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाएगी और इससे वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले बंदरगाहों में से एक होगा। इस बंदरगाह से आवाजाही में लगने वाला समय तथा लागत कम होगी और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से सीधी कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑनलाइन माध्यम से केरल के अल्लापुझा में अर्थुंकल बंदरगाह के निर्माण के तीसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। अर्थुंकल क्षेत्र के मछुआरों की लगातार मांग पर वर्ष 1991 में अर्थुंकल फिश लैंडिंग सेंटर शुरू किया गया था। तीसरे चरण के कार्यों के लिए 150 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय नहीं रहा। आज नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के संदर्भ में भारत पूरी तरह सचेत है। हर कार्रवाई के परिणाम होते हैं। घटनाक्रम चाहे अच्छा हो या बुरा, भारत अपनी प्रतिक्रिया देगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हो गई है।
The era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And in so far as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan.
बांग्लादेश के बारे में उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में राजनीतिक बदलावों के बीच भारत को अपने हितों पर ध्यान देना होगा। मालदीव के साथ भारत के संबंधों पर उन्होंने कहा कि मालदीव को लेकर भारत के दृष्टिकोण में उतार चढ़ाव रहा है। अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों का जिक्र करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि सामाजिक स्तर पर लोगों के बीच संबंध मजबूत हैं और अफगान नीति की समीक्षा के बाद भारत अपने हितों के लिए सजग है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक देश को अपने पड़ोसियों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in और हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चे को दस्त से कैसे बचाएं?
रक्षा, रोकथाम और उपचार के साथ बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। खाना पकाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोएं।
और दस्त हो जाने पर?
हर दस्त के बाद बच्चे को ORS का घोल पिलाएं और 14 दिन तक जिंक की गोली दें।
समझ गई डॉक्टर साहब।
क्या?
रक्षा, रोकथाम और उपचार।
अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के बारे में विभिन्न हितधारकों के विचार और सुझाव सुनने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संसद की संयुक्त समिति की बैठक नई दिल्ली में जारी है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार मुंबई के ऑल इंडिया सुन्नी जमायतुल उलेमा और नई दिल्ली के इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स जैसे संगठन समिति के समक्ष अपने विचार रख रहे हैं। एक रिपोर्ट।
संयुक्त संसदीय समिति का गठन लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने आम लोगों, स्वयंसेवी संगठनों, विशेषज्ञों और संस्थानों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए थे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की कमी दूर करना और उनकी संचालनगत क्षमता में वृद्धि करना है। इस विधेयक में 1995 के वक्फ अधिनियम का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन करने का प्रावधान है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का प्रारूप हिंदी और अंग्रेजी में लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति को सौंपा गया था। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के एक उपाय के रूप में सरकार ने आज एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया और भविष्य पोर्टल EHRMS के साथ डिजिटल एकीकरण किया। इन अनूठे उपायों की शुरुआत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव विवेक जोशी ने मानव संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए इन उपायों को मील का पत्थर बताया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अगर महिलाओं के विकास में भागीदारी नहीं होगी तो देश वांछित विकास हासिल नहीं कर सकता। वे आज दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका विषय पर आयोजित एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए झांसी और कानपुर के बीच लगभग 36,000 एकड़ क्षेत्र में एक औद्योगिक शहर विकसित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि शहर में एक विशेष हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब निवेशकों की प्राथमिकता में है और उनकी सरकार राज्य में निवेश के इच्छुक निवेशकों और उद्यमियों को हर तरह की मदद और समर्थन देगी। झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में चंपई सोरेन के स्थान पर घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के राजभवन में आयोजित सादे समारोह में रामदास सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज दोपहर रांची के धुरवा मैदान में एक समारोह में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इस मौके पर झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने का फैसला किया है। दोनों देशों ने दोहराया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए आवश्यक है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय संबंधी कार्यतंत्र की 31वीं बैठक कल बीजिंग में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने मतभेद कम करने और लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान खोजने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर रचनात्मक बातचीत की। भारत और सऊदी अरब सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। इस आशय के एक समझौता ज्ञापन पर आज रियाद में हस्ताक्षर किए गए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और सऊदी जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के अध्यक्ष डॉ हुसैन अल अंगारी ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉ सुहेल खान भी इस अवसर पर मौजूद थे। इस समझौते से दोनों देशों के शीर्ष लेखा परीक्षण संस्थानों के बीच पहले से घनिष्ठ संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब पेरिस पैरालंपिक की खबरें।
आज भारतीय खिलाड़ी तीन प्रतिस्पर्धाओं में पदक खाता खोलने का प्रयास करेंगे। निशानेबाजी में टोक्यो पैरालंपिक की स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखड़ा और मोना अग्रवाल ने S1 वर्ग के फाइनल राउंड में प्रवेश कर लिया है। तीन पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं भी होंगी, जिनमें महिलाओं के डिस्कस थ्रो में ज्योति करम और साक्षी कसाना, महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में प्रीति पाल और पुरुषों के शॉट पुट में मनु दावा पेश कर रहे हैं। इसके अलावा साइकिलिंग के क्वालिफाइंग मुकाबले में भी भारत के अर्षद सैक दावा पेश करेंगे। रोइंग स्पर्धा में अनीता और नारायण कोंगन पल्ले डबल स्कल्स में चुनौती देंगे। पहले कल रात मिक्स कंपाउंड तीरंदाजी में शीतल देवी और राकेश कुमार की टीम ने 1399 अंक के सम्मिलित स्कोर के साथ पैरालंपिक में नया रिकॉर्ड बनाया। यह जोड़ी शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में 2 सितंबर को क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
इस बीच पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन SL3 श्रेणी में मानसी जोशी यूक्रेन की ओक्साना कोजियाना से हारकर महिला एकल से बाहर हो गई हैं। पुरुष वर्ग में मनोज सरकार भी SL3 वर्ग के दूसरे मैच में थाईलैंड के मोंग खोन बुनसुन से हार गए। और अब मौसम। मौसम विभाग ने कहा है कच्छ क्षेत्र के ऊपर बने गहरे दबाव के चक्रवात में बदलने की आशंका है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन ने चक्रवात के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए हैं।
आज सुबह से ही कच्छ जिले में बारिश की तीव्रता में काफी कमी आई है, लेकिन जिला प्रशासन ने संभवित चक्रवात के मद्देनजर व्यापक कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक आवाजाही से बचने का आग्रह किया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुद्रा, कांडला और जखाऊ बंदरगाहों पर 3 नंबर के सिग्नल लगाए गए हैं। मछुआरों को अगले 3 दिन के दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कच्छ के मांडवी, अबडासा और लखपत तहसीलों में कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद मोबाइल नेटवर्क भी तरह से प्रभावित हुआ है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक महोत्सव में भारत के फिनटेक कौशल को रेखांकित किया। उन्होंने कहा फिनटेक क्षेत्र ने वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के पालघर में भारत के गहरे पानी के सबसे बड़े बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा पाकिस्तान के साथ अब बातचीत का समय नहीं रहा और हर कार्रवाई के परिणाम होते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर विभिन्न हितधारकों के सुझाव जानने के लिए संसद की संयुक्त समिति की बैठक नई दिल्ली में जारी। और पेरिस में पैरालंपिक खेलों के 2 दिन भारतीय खिलाड़ियों की निगाहें निशानेबाजी, एथलेटिक्स और बैडमिंटन में पदक जीतने पर होंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।